Prabhupada, Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Gurudev. Shri Radha Sam Sundar Juki. श्री श्री कृष्ण बलराम जीव की श्री श्री गौर निताय जीव की शिल प्रभुपाद की समवेत भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो यं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणे प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्योदयसुतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरातिशे नमः। हे कृष्ण करुणासिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवास्वादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। आज हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय दो श्लोक क्रमांक 19 नंबर पाठ करके श्रवण करेंगे। बहुत मार्मिक श्लोक है। अनंत स्फटिके जय छे एक सूर्य भसे। अनंत स्फटिके जय छे एक सूर्य भसे। तो इच्छे जीव गोविंदेर अंश प्रकाशे। अनंत स्फटिके जय छे एक सूर्य भसे। तैछे जीव गोविंदेर अंश प्रकाशे। अनंत स्फटिके जय छे एक सूर्य भासे। तैछे जीव गोविंदेर अंश प्रकाशे। बताइए तैसे जीव गोविंद अंश प्रकाशे। अनंत स्फटिके जय छे एक सूर्य भासे। तैसे जीव गोविंद अंश प्रकाशे। अनंत स्फटिके जय छे एक सूर्य भासे। छे जीव गोविंदेर अंश प्रकाशे। अनंत स्फटिके जय छे एक प्रकाश है। शिल प्रभुपाद के द्वारा शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य। अनंत अनंत स्फटिके रत्नों में जैसे जैसे एक एक सूर्य सूर्य भासे प्रकट होता है। तो इछे जैसे जीवे जीवों में गोविंदे गोविंद का अंश अंश प्रकाशे प्रकट होता है। जिस प्रकार एक ही सूर्य असंख्य रत्नों में प्रतिबिंबित होता दिखता है, उसी प्रकार गोविंद परमात्मा रूप में समस्त जीवों के हृदय में प्रकट होते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, सूर्य एक विशिष्ट स्थान पर स्थित होता है, सूर्य एक विशिष्ट स्थान पर स्थित होता है किंतु असंख्य रत्नों में प्रतिबिंबित होता है, असंख्य रत्नों में प्रतिबिंबित होता है और असंख्य स्थानीय कार्य में प्रकट होता है। इसी प्रकार यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने दिव्य धाम गोलोक वृंदावन में नित्य विद्यमान रहते हैं, किंतु ये हर प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में प्रतिबिंबित होते हैं। उपनिषदों में कहा गया है कि जीव तथा परमात्मा एक ही वृक्ष पर बैठे दो पक्षियों की तरह है। परमात्मा जीव को उसके विगत कर्मों के फल स्वरूप सकाम कर्मों में प्रवृत्त करते हैं, किंतु स्वयं परमात्मा को ऐसे कार्य में कोई प्रयोजन नहीं रहता। जो ही जीव सकाम कर्म करना बंद कर देता है और भगवान की श्रेष्ठता को समझकर उनकी सेवा करने लगता है तो ही वो सारी उपाधियों से मुक्त हो जाता है और उस शुद्ध स्थिति में भगवत धाम अर्थात वैकुंठ में प्रवेश करता है। परमात्मा सारे जीवों के पथ प्रदर्शक होकर भी जीवों की इच्छाओं को पूरा करने में हाथ नहीं बटाते हैं, क्योंकि ये भौतिक प्रकृति के द्वारा उनकी पूर्ति के लिए व्यवस्था करते हैं। जो ही जीव परमात्मा के साथ अपने शाश्वत संबंध के प्रति जागरूक हो उठता है और उन्हीं का सहारा लेने लगता है तो ही वो भौतिक भोग के बंधन से मुक्त हो जाता है। ईसाई दार्शनिक कर्म के विधान में विश्वास नहीं करते, अतएव ये तर्क देते हैं कि यह कहना बेहुदा होगा कि मनुष्य को अपने उन पूर्व कर्मों के फल भोगने के लिए बाध्य होना पड़ता है। जिनसे यह अनजान है। एक अपराधी को पहले न्यायालय में गवाही द्वारा उसके दुष्कर्मों से अवगत कराया जाता है और एक दंड दिया जाता है। यदि मृत्यु पूर्ण विस्मृति है तो फिर मनुष्य को पुराने दुष्कर्मों के लिए दंडित क्यों किया जाना चाहिए? परमात्मा की धारणा इन गलत तर्कों का एकमात्र अकाट्य उत्तर है। परमात्मा हर जीव के विगत कर्मों के साक्षी है। मनुष्य भले ही अपने बचपन के कार्यों को स्मरण ना रखे, किंतु उसका पिता जिसने उसे अनेक अवस्थाओं से गुजरते देखा है निश्चित रूप से स्मरण रखता है। इसी प्रकार अनेक जन्मों में जीव के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, किंतु परमात्मा सदैव उसके साथ रहते हैं। अतएव ये उसके विभिन्न शरीरों में से गुजरने से होने वाले विकास के बाद भी उसके सारे कार्यों का याद रखते हैं। यही श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य समाप्त। तो श्री चैतन्य चरितामृत के रचयिता श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी झामटपुर ग्राम, उनका गांव का नाम है झामटपुर। तो वहां एक दिन वो स्वप्न देख रहा है कि नित्यानंद प्रभु आकर उनको दर्शन दिया नित्यानंद प्रभु का रूप बड़ा मधुर, बड़ा दिव्य कांति। तो नित्यानंद प्रभु कहने लगे कि कृष्णदास, ओरे 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 कृष्णदास, ना कर भय, भय मत करो, वृंदावन जाओ तहां सर्वलभ्य है। कृष्णदास तुम वृंदावन में जाओ, तुम्हारा सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। और जैसे सपन देखा उसके पश्चात नित्यानंद प्रभु अंतर्धान हो गए। जब सवेरे जागे कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वो वृंदावन आने के लिए तैयार हुए। अब वृंदावन आते ही उनका बहुत आनंद मिला। उनको उन्होंने ऐसे लिखा है कि नित्यानंद कृपा में मुझे वृंदावन धाम प्राप्त हुआ, जिनकी कृपा से मुझे रूप सनातन का दर्शन मिला, जिनकी कृपा से मुझे स्वरूप दामोदर के दर्शन मिला। ऐसे उन्होंने बहुत पदों में कृपा की प्रार्थना कर रहे कि कृपा से ही मिला, जो हम सबको सब कुछ प्राप्त होता है वो कृपा से ही प्राप्त होता है, अपने पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं होता है कुछ भी। तो इसलिए हम सभी जीवों को कृपा पर ही निर्भर करना चाहिए। कृपा जो ब्रज में आए हैं, भागवत कथा में भाग ले श्रवण कर रहे हैं, ये सब भगवत कृपा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। भगवान की कृपा ही समझना चाहिए। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिस अवस्था में इस ग्रंथ को लिखन के, अत्यंत वृद्धावस्था, कान में देखते नहीं, कान में श्रवण करते नहीं, आंख में देखते नहीं, उसी अवस्था में इस ग्रंथ का रचना किए। ना देखिए नयने, ना सुने श्रवणे, तबु लिखी ए बड़ विस्मय, की अद्भुत चैतन्य चरित, कृष्णे उपजीवे प्रीति, बुझीबे रसेर रीति, सुनिले हय बड़ हित। चैतन्य चरिता में तो कोई अगर श्रवण करे तो उसका कल्याण सुनिश्चित। ये जो ग्रंथ है स्वयं मदन मोहन ने लिखाया। कबीर गोस्वामी लिखते हैं अपने कॉलम में कि मदन मोहन जी ने मुझे स्वयं प्रेरित किए लिखने के लिए। जब उन्होंने लिखना प्रारंभ किया तो मदन मोहन की गले के माला अपने आप गिर पड़े और वही प्रसादी माला पुजारी ने कृष्णदास कबीर गोस्वामी को पहना दिया। तब से उन्होंने लिखना शुरू किया और लिखते लिखते एक दिव्य ग्रंथ का रूप ले लिया। चैतन्य महाप्रभु का पूरा जीवन चरित, उनकी शिक्षा को पूर्ण रूप से उन्होंने लिखा। तो चैतन्य चरितामृत सबसे पहले मंगलाचरण, किसी भी ग्रंथ का शुरुआत होती है मंगलाचरण से। तो मंगलाचरण त्रिविध प्रकार, किसी भी मंगलाचरण कितने प्रकार के? तीन प्रकार, वस्तु निर्देश, आशीर्वाद और नमस्कार। सही मंगलाचरण है त्रिविध प्रकार, वस्तु निर्देश, आशीर्वाद और नमस्कार। तो नमस्कार रूप मंगलाचरण पहले कबीराज गोस्वामी पहला अध्याय में वर्णन कर चुके हैं। अभी वस्तु निर्देश आत्मक मंगलाचरण का वर्णन कर रहे हैं। वस्तु निर्देश इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय क्या है, इसमें विषय वस्तु क्या है, इस पर विचार कर रहे हैं। इसी एक श्लोक लिख रहे कबीराज गोस्वामी, जद्वैतम ब्रह्मोपनिषदि तदपश्य तोनुभा, ज आत्मा अंतर्जामी पुरुषेति शेषांश विभव, सड़ै सर्ज पूर्ण जय भगवान स स्वयं स चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्त्वं परमिह। इसी श्लोक की व्याख्या हो रही है। तो इसका पहले जो प्यार है जद्वैतम ब्रह्मोपनिषदि, इसकी व्याख्या हो चुकी है। जद किसी भगवान की जो अंग कांति है, इस चैतन्य महाप्रभु के अंग प्रभा है। भिन्न भिन्न संप्रदायों में उपासक भिन्न भिन्न उपासक है और उपासक उपासक भिन्न भिन्न है। जैसे जो ब्रह्म उपासक है, जो ब्रह्मवादी है, वो ब्रह्म का उपासना करे। जो ज्ञान मार्गी है वो ब्रह्म का उपासना करेगा। जो योग मार्गी है वो परमात्मा की उपासना करेंगे और जो भक्त है वो भगवान की उपासना करेंगे। तो पहला जो ब्रह्म का उपासना, जिससे चैतन्य महाप्रभु अंग कांति, श्री चैतन्य महाप्रभु के अंग कांति जो ब्रह्म स्वरूप है, इसकी वर्णन हो चुका है। जद्वैतम ब्रह्मोपनिषद में जिसको ब्रह्म कहा गया, वही श्री चैतन्य महाप्रभु के अंग कांति है। जद्वैतम ब्रह्मोपनिषदि तदपश्य तोनुभा ज आत्मा अंतर्जामे पुरुष इति सशांश विभव। अभी महाप्रभु के अंश स्वरूप जो परमात्मा की वर्णन करने जा रहा है। तो कबीर गोस्वामी अपने दैन इस अध्याय में अपने दैन प्रकट कर रहे हैं कबीर गोस्वामी कि हमारी जीभा में जीभा जो है ये बिल्कुल सूखा पड़ा है, इसमें कोई रस नहीं है। जैसे मरुभूमि में सूखा पड़ा है, अगर उसे जगह में कोई नदी प्रवाहित होने लगे तो जगह सरस बन जाते है कि नहीं। कोई मरुभूमि है वहां अगर नदी प्रवेश कर जाए, नदी प्रवाहित होने लगे, उस जगह सरस होने लगता है। उसी प्रकार हमारी जीभा जो है ये पूरा सूखी पड़ा हुआ है। अगर इसी जीवा में चैतन्य महाप्रभु की कथा लीला कथा अगर प्रवेश करे, प्रवाहित होने लगे, ये जीवा भी सरस बन जाएगा। उन्होंने एक श्लोक में लिखते हैं, कृष्ण कीर्तन गान नर्तन कला पाथो जने भ्राजिता सद्भक्ता बलि हंस चक्र मधुप श्रेणी विहारास्पदम कर्णानंदी कल ध्वनिर्वह तुमे जीभा मरु प्रांगणे श्री चैतन्य दयानिधे तव लसत् लीला सुधा सर्धुनि। हे दयानिधे, कबीर गोस्वामी दयनता व्यक्त कर रहे हैं कि हे दयानिधे, जीभा मरु प्रांगणे, जीभा मेरा सूखा पड़ सुखी सुख सुख गया, जीभा में कथा नहीं है, क्योंकि आपने कृपा से अपने बल पर कोई लीला कथा गायन नहीं कर सकते। जब तक भगवत कृपा की अनुभव ना हो, भगवत कृपा किसी पर ना हो, तब तक वो भगवत लीला कथा गायन नहीं कर पाएंगे। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुख ही जिभा दो स्वयं एवं स्फुरत। जब तक भगवत कृपा किसी पर ना हो, तब तक वो भगवत लीला कथा गायन कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए उन्होंने कह रहे कि कर्णानंदी कल धनिर बहुत में, इसी कर्ण के कुहर में जो गर्त है, इसमें कृष्ण कथा प्रवाहित निरंतर होते रहे और हमारा हृदय को निर्मल करते, और आपकी जो कथा मधुराति मधुर जो कथा है, इस कथा का मैं गायन कर सकूं। अपनी दैन्यता को प्रकट कर रहे, किसी भी वक्ता को किसी भी श्रोता को दैन्यता का अवलंबन करना पड़ेगा। बिना दैन्यता से भक्ति नहीं आती है। भक्ति महारानी की वाहन जो है वो दैन्यता है। दैन्यता के आधार पर भक्ति महारानी टिके हुए है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षा स्तकम में लिखते हैं, त्रिनादोपि सुनिचेन तरुरोपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदाहरि। अमानेन मानदेन, तीन चार चीज, त्रिनादोपि सुनिचेन, त्रिन से भी नीच, तरु से भी सहिष्णु, स्वयं सम्मान की आकांक्षा ना करे, दूसरे को सम्मान प्रदान करे, और अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदाहरि, निरंतर जिह्वा पर जिसका नाम चल रहा है वही कीर्तन के अधिकारी है। तो सबसे पहले दैन्यता को अपने हृदय में लाना है, और दैन्यता के लिए भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु मुझे दैन्यता प्रदान करें। भगवान के समक्ष जब हम स्तुति करेंगे व कुछ प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना के साथ दैन्यता भी होना चाहिए। बिना दैन्यता से प्रभु रिझेगा नहीं। तो कबीर गोस्वामी लिखते हैं कि कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन कला पाथो जनी भ्राजिता सद भक्ता बलि हंस चक्र मधुप श्रेणी विहारास्पदम। इस जो सरोवर में हंस है, चक्र है, मधुप, मतलब तीनों प्रकार के साधक, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, तीनों ही इसमें आनंद ले रहा है। कृष्ण कीर्तन गान नर्तन सभी प्रकार के भक्त इसमें आनंद ले रहा है। किंतु कबीराज गोस्वामी लिखते हैं, मैं बड़ा अभागा हूँ, मैं मेरा दुर्भाग्य बहुत, क्योंकि हमारी जीभा पे कृष्ण कथा नहीं है। आपने कितनी दयनीयता का उन्हें निवेदन कर रहे हैं कि मेरी जीभा में कृष्ण कथा नहीं है, हे दयानिधे आप कृपा करके मेरी जीभा में कृष्ण कथा का प्रवाहित करिए। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया सरधुनी, सरधुनी देवलोक के जो गंगा बहती है उसको सरधुनी कहते हैं। जैसे सरधुनी किसी जगह में प्रवाहित होने लगे उस जगह को पवित्र बना देते हैं। जैसे यमुना जी में यहाँ के जो गटर का पानी है ये अशुद्ध है, जब यही पानी यमुना जी मिल जाएगा वो पानी शुद्ध हो जाएगा। उसी प्रकार जब ये सरधुनी एक गंगा पानी जब प्रवाहित होने लगेगा समस्त स्थलों का वो पवित्र बना देंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी जो जड़ कथा है अगर इस कथा भी भगवत कथा में स्पर्श हो जाए, हम सब हमेशा जो शब्द कह रहे हैं ये जड़ शब्द कह रहे हैं, ये शब्द भी अगर लीला कथा से स्पर्श हो जाए ये कथा भी शुद्ध बन जाएगा। जिस प्रकार गट्टर के पानी यमुना जी में स्पर्श होने से गट्टर का पानी भी यमुना बन जाती है, तो इसी प्रकार हमारी सभी क्रियाकलाप के साथ भगवान के नाम रूप गुण लीला का संबंध होना चाहिए, तब जाकर वो कुछ भी वो सब पवित्र बन जाएगा। जैसे वृंदावन, जैसे अमृत का समुद्र, समुद्र वहां कोई भी कामे क्रोधी लोभी कोई भी प्रवेश करे उसको अमृत बना देंगे। अमृत कुंड में किसी मीठा सरोवर में कोई अगर नमकीन बा कुछ ऐसे पानी डाल भी दे, एक ग्लास नमकीन पानी बा कुछ ऐसे कड़वा पानी डाल दे उसको भी मिठास बना देंगे। उसी प्रकार हमारे जैसे कामी क्रोधी लोभी अगर इस वृंदावन भूमि में प्रवेश कर जाए तो इस पापी व्यक्ति भी पवित्र बन जाएगा। तो इसीलिए हम सब बड़े भाग्यवान हैं। चैतन्य महाप्रभु यहां लिखते हैं कबीराज गोस्वामी कि एक हमारे हृदय में दो पंक्षी बैठे हैं, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। परमात्मा एक है, जीवात्मा बहु है। परमात्मा बहु नहीं है, परमात्मा एक वस्तु, जीवात्मा असंख्य अनेक अनगिनत। यहां अनंत स्फटिक जो है एक सूर्य भासे, एक ही सूर्य किंतु अनंत स्फटिक में प्रतिबिंबित हो रहा है, अनंत स्फटिकों में इसको दिखाई पड़ रहा है, दिखने लगता है कि बहुत सूर्य है किंतु बहुत सूर्य नहीं है, एक ही सूर्य है। अनंत स्फटिक जो है एक सूर्य भासे, तो इच्छे जीवे गोविंदर अंश प्रकाश है। उसी एक दृष्टांत के साथ कैसे एक दृष्टांत के साथ दर्शाते हैं कि इसी प्रकार परमात्मा असंख्य जीवों में परमात्मा रूप में हृदय अंतर्जामी रूप में निवास कर रहे हैं। उदाहरण सूर्य की है, सूर्य एक सूर्य अनंत स्फटिकों में प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहे हैं, दिखाई दे रहे सूर्य को। उसी प्रकार एक परमात्मा भिन्न भिन्न जीवों में असंख्य जीवों में परमात्मा हृदय अंतर्जामी रूपे विराजमान है, इसका प्रमाण कर रहे हैं। अब देखिए बड़ा सुंदर भाव उठा रहे हैं कि ये जो प्रतिबिंब है ये तो अवास्तव है, क्योंकि भौतिक उदाहरण भौतिक दृष्टांत तो जो दिया जाता है किसी के प्रमाण के लिए किंतु यथार्थ तो नहीं होते, वो सिद्धांत तो नहीं होते। सूर्य का जो प्रमाण है ये यथार्थ प्रमाण नहीं है। जैसे परमात्मा ये वास्तव वस्तु है, अवास्तव नहीं है। परमात्मा जैसे जीवों के हृदय में परमात्मा निवास कर रहे हैं, परमात्मा जीव रूप में निवास कर, ये प्रतिबिंब नहीं है, ये वास्तव है, ये भौतिक नहीं है, ये आध्यात्मिक है। वो भौतिक है, ये आध्यात्मिक है, ये दोनों में अंतर है। जब भौतिक जीव जब परमात्मा की ओर दिखने लगता है तो जीव भौतिक जीव भी धीरे से, प्रभुपाद जी लिखते हैं, जैसे एक वृक्ष में दो पंक्षियां बैठे हैं, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। परमात्मा निर्लिप्त है, किसी प्रकार हस्तक्षेप नहीं कर रहे, जो कर रहे करने दीजिए। और हमारे जो शरीर प्राप्त हुआ एक कर्मजन्य है, कर्म के आधार पर शरीर बना है। कोई किसी का स्त्री शरीर प्राप्त हुआ एक कर्म के अनुसार, कर्मे न दैव नेत्रे न जंतुर देह उपपत्तयो स्त्रिया प्रविष्ट उदरंग पुंस रेत कनाश्रय। कपिल देव जी कहते हैं माता देवहूति से कि माँ ये जो शरीर प्राप्त हुआ है एक कर्मजन्य है, एक किसी, किंतु परमात्मा कर्मजन्य नहीं है। परमात्मा सब जीव में एक रूप से निवास कर रहे हैं, परमात्मा जो निवास कर रहे हैं एक रूप से, छोटो बड़ो कोई विचार नहीं है। किंतु हम जो शरीर प्राप्त किए ये हमारे कर्म के अनुसार। तो प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य लिखते हैं कि कोई जीव सकाम कर्म करते हैं, सकाम सकाम कर्म करते हैं, कोई निष्काम कर्म करते हैं, कोई शुद्ध भक्ति करते हैं। तो सकाम कर्म का फल जो है वो अपने कर्म का फल भोग रहा है, सकाम कर्म जो है वो अपने फल का भोग रहा है, कर्म कर रहे हैं किंतु अपने कर्म का फल भोग रहा है। निष्काम कर्म जो है वो भगवान की कर्म है किंतु उसमें भी अपनी निष्कामता है, भगवान के कर्म कर रहे हैं किंतु निष्कामता है, वो भी पूर्ण शुद्ध भक्ति नहीं है। और शुद्ध भक्ति क्या है? कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, जहां कृष्ण की प्रीति अतिरिक्त और कुछ नहीं है वो है शुद्ध भक्ति। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं एक बड़ा सुंदर बात है, यहाँ वर्णन करते हैं कि मानो कि जीव तो देखते नहीं है, परमात्मा देख रहे हैं। जैसे छोटे से बच्चा, छोटी सी बच्चा, वो अपने जो पूर्व में क्या किया उसको याद नहीं है, पिता का याद है बेटा ने क्या किया, सारे इतिहास उसको याद है। इसी प्रकार हमने जो किया, जो कर्म किया, मुझे याद नहीं है। याद किसकी है? परमात्मा की याद है, परमात्मा स्मरण कर रहे हैं। तो इसी प्रकार परमात्मा उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, परमात्मा इति चापुक्त देहस्मिन पुरुष पर। और जीव का सदसद जनित कैसे प्राप्त हो रहे? कारणम गुण संगस्य सदसद जनि जन्मसु, प्रकृति का जब गुणों का संग होता है, जीव का जब प्रकृति के गुणों का संग होता है तब उसका सद असद जनि प्राप्त होता है। आज मुझे सद जनि प्राप्त हुआ ये हमारे कर्म के अनुसार, आज मुझे असद जनि प्राप्त हुआ ये हमारे कर्म के अनुसार। इसीलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं जो बुद्धिमान है वो धीरे धीरे से परमात्मा की ओर देखने लगता है। परमात्मा जैसे अर्जुन जैसे ही भगवान की तरफ देखे तो भगवान ने ज्ञान देना शुरू किया। भक्त हसी में सखा चेति रहस्यम हेतु उत्तमम, आज तुम मेरे भक्त हो, सखा हो, इसलिए मैं तुमको एक ज्ञान प्रदान कर रहा हूं। इसी प्रकार जब जीव भगवान की तरफ उन्मुख होते हैं तब भगवान परमात्मा रूप से गाइड करते हैं। अगर परमात्मा की तरफ नहीं देखे परमात्मा उस पर ध्यान नहीं देंगे। परमात्मा कहे तुम जो इच्छक सो करो, जीव की कर्म स्वतंत्रता है, क्षुद्र स्वतंत्रता जीव में है, वो आपने स्वतंत्रता का कभी दुरुपयोग करते हैं, कभी सदुपयोग करते हैं, कभी भगवान उन्मुख होते हैं, कभी दुष्कर्म करने लगता है, दुष्कर्म का परिणाम अनादि संसार दुख जातना भोगना पड़ता है। और जब वो सदुपयोग करता है अपने कर्म का, अपने जीवन का सदुपयोग करता है, भगवान का नाम रूप गुण लीला का श्रवण करते हैं तब उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। प्रभुपाद जी लिखते हैं जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण दिए कि जो ईसाई लोग है ये कर्म पर विश्वास नहीं करते हैं। ये जो प्रारब्ध कर्म के अनुसार जीव का शरीर प्राप्त होता है ईसाई लोग नहीं मानते। तो प्रभुपाद जी यहाँ उदाहरण देते जैसे न्यायालय में कोई दोषी व्यक्ति न्यायालय में ले जाते फिर वहां उसका दोष का दिखाई जाते है क्या क्या दोष किया, दोष के ऊपर उसका दंडित किया जाता है। उसी प्रकार हमारे भी कर्मों का एक विचार होता है, सब कुछ देख माने परमात्मा साक्षी रूप से देखते हैं, वहां गवाही देते कि तुमने एक कर्म किए इसका कर्म एक फल है। इसी प्रकार हम सबको सावधानी की सावधानी से भक्ति उन्मुख कर्म में लगना पड़ेगा। प्रभुपाद जी लिखते हैं, जैसे जैसे हम लोग सिनेमा हॉल में जाते हैं, सिनेमा हॉल में कोई सबसे पहले सिनेमा को देख रहे हैं अच्छा से, कैसे कैसे नायक नायिका किस प्रकार से माने घटना कर रहे हैं, कैसे किसी को पिटाई कर रहे हैं, किसी को क्या कर रहे हैं, कोई बीच में घुसा, अगर बीच में घुसते ही क्या कहेंगे, इसको क्यों पीट रहा है, वो नहीं देखा कि इन्होंने कितना बुरा कर्म किया, कितना गलत काम किया। जब उसके माता बाप उनके परिवार ने उसको समझाते कि इस व्यक्ति ने बहुत पाप कर्म किए, ये पाप कर्म के स्वरूप इसको पिटाई हो रही है। उसी प्रकार जीव को ज्ञान, कभी कभी जीव प्रश्न उठाते कि हम मुझे क्यों पिटाई किया जा रहा है, किंतु जीव की बाप किसी बच्चे का छोटी अवस्था में शरीर पूरा हो जाते, किसी बहुत बड़ा बीमारी हो जाती है, बहुत कष्ट भोगना पड़ता है, क्या कारण है, वो तो कोई पाप कर्म नहीं है क्या, उनका विगत कर्म बहुत बुरा है। इसीलिए जो भी हमने जो भी काम किया कर्म किया उस पर ध्यान ना दे, कर्माने निर्दहते किंतु च भक्ति भाजाम, आज से मैं भक्ति मूलक कर्म में ही नियुक्त रहेंगे, भले हमारे शरीर में बहुत सारे रोग रहे, बहुत मानसिक तनाव रहे, कष्ट रहे, फिर भी मैं भक्ति छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हरे कृष्ण महामंत्र का दिव्य ध्वनि का हम गायन करेंगे। प्रभुपाद जी यहाँ कबीराज गोस्वामी लिखते हैं कि जो अंतर्जामी आत्मा है, आत्मा अंतर्जामी तारे, आत्मा अंतर्जामी जारे जोग शास्त्र काय सह गोविंदर अंश विभूति यह है, एक गोविंदर विभूति है। ताहले तीन चीज, ब्रह्म परमात्मा और भगवान। ब्रह्म है श्री चैतन्य महाप्रभु की अंगकांति, अंश है परमात्मा चैतन्य महाप्रभु के अंश स्वरूप है, और भगवान है जो श्री चैतन्य महाप्रभु के, जो भगवान की व्याख्या है उस श्री चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अनंत स्फटिक जैसे एक सूर्य भासे, एक ही सूर्य अनंत, यहाँ और एक उदाहरण दे रहा है। देखिए जैसे शरीर भी छोटा बड़ा है, शरीर किसी का छोटा है, जैसे किसी का देव शरीर है, किसी का मनुष्य शरीर, किसी के मच्छर है, तो परमात्मा परमात्मा सभी जीवों में भिन्न भिन्न रूप में विराजमान है। जैसे उदाहरण दिया टीकाकारों ने कि जब बांसुरी में हवा प्रवेश करते, बांसुरी बजाते, हवा एक है किंतु भिन्न भिन्न रंध्रों में भिन्न भिन्न आवाज निकालते, भिन्न भिन्न रंध्रों में छह सात जो रंध्र है वो अलग अलग स्वर निकालते। उसी प्रकार परमात्मा एक है किंतु भिन्न भिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न मूर्ति धारण करते। तो क्योंकि ये अचिंत्य शक्ति है, ये भगवान की लीला है, इसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, क्योंकि भगवान अचिंत्य शक्ति है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान एक बार नारद मुनि वैकुंठ में गए, तो जब वैकुंठ से आ रहे थे तो सबसे पहले ब्राह्मण से मिले, तो ब्राह्मण पूछने लगे मुनिवर आप कहाँ गए थे, कहे कि मैं वैकुंठ से आ रहे हैं। तो आप बोलिए बताइए ठाकुर वहां प्रभु क्या कर रहे थे उस समय जब आप गए, तो ठाकुर जी वो क्या कर रहे थे, कहे कि ठाकुर जी एक सुई के नौ से एक हाथी को निकाल रहे थे, हाथी चला गया किंतु पूचक अटक गया। तो ब्राह्मण का विश्वास नहीं हुआ, ब्राह्मण कहे कि ये असंभव है, आप झूठ कह रहे हैं, ये संभव नहीं है, सुई के नौ से हाथी, भगवान ने हाथी पास करा रहे किंतु पूछ अटक रहे। जब एक मूची के पास आया तो मूची से कुछ मुची कहने लगे हे मुनिवर आप कहाँ से आ रहे हैं, तो नारद मुनि कहा कि भाई मैं वैकुंठ से आ रहा हूँ। तो उन्होंने भी पूछा कि ठाकुर जी वहां क्या कर रहे हैं, तो नारद मुनि ने कहा कि ठाकुर जी ने एक ही उत्तर, एक सुई के नौ से छेद से एक हाथी को प्रवेश करा रहे हैं, किंतु पूछक अटक रहा है, पूछ अटक रहे हैं। तो कहने लगे कि उन्होंने अविश्वास नहीं किए, उन्होंने आनंद से भर गया कि प्रभु की लीला कितनी असीम है, क्या नहीं कर सकते। और देखिए उनको प्रभु ने साक्षात दर्शन दिया, जो मुची को भगवान ने दर्शन दिया और दर्शन देकर उनका कृतार्थ किए। कहने का उद्देश्य ये है कि प्रभु के ऊपर विश्वास ही बलवान है। यहाँ अनंत स्फोटि के जो इच्छे एक सूर्य भाषे, कभी कभी किसी लोगों को विश्वास नहीं होता है कि ये सब फेनाटिक है, ये सब साधारण है, ये सब कोई विश्वास की योग्य माने कहने का योग्य नहीं है। किंतु विश्वास भक्ति में एक स्वरूप है विश्वास। भक्ति में अगर विश्वास नहीं है तो भक्ति में एक कदम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आदो श्रद्धा ततो साधु, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। महाप्रभु कहे कि विश्वास सर्वोपरि है। जैसे उड़ीसा में जो ठाकुर जी साक्षी देने के लिए गए थे, साक्षी गोपाल, वो कहानी हम सब लोग जानते हैं कि ठाकुर जी हम मूर्ति रूप में हैं, किंतु ठाकुर जी चल कर गए साक्षी देने के लिए, विश्वास ही तो है। किंतु इस समय भौतिक ज्ञान के प्रभाव से लोग विश्वास करना नहीं चाहते कि परमात्मा सभी जीवों के अंदर है और परमात्मा रूप से साक्षी रूप में है और पुत्री जीव के कर्मों को देख रहा है, वो क्या कर रहे हैं और कर्म के अनुसार फल भी प्रदान कर रहे हैं। तो इस पर हम सबका एक ध्यान रखना है कि परमात्मा जो है सब कुछ देख रहा है, उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर, ये परमात्मा के पांच विशेषण है। देख रहा है, अनुमंता अनुमोदन कर रहा है, भर्ता भरण पोषण कर रहा है, भर्ता भोक्ता महेश्वर, महेश्वर महेश्वर रूप में परमात्मा रूप में है, इसी को परमात्मा कहा जाता है। आज देखिए एक विडंबना ये है, आज विभिन्न बिहार बंगाल उड़ीसा में विशेष करके क्या होता है, छोटे छोटे जीव को हत्या करके, छोटी छोटी जीव को हत्या करके हरिनाम व कुछ ऐसे पुण्य कर्म किया जाता है। छोटी छोटी जीव की हत्या करके क्या किया जाता है, पुण्य कर्म किया जाता है। एक जीव की हत्या और एक साइड में पुण्य कर्म व कुछ ऐसे मांगलिक कर्म किया जाता है। ये वैष्णव धर्म का विरुद्ध है, ये वैष्णव धर्म ये शिक्षण है, क्योंकि जीवे सम्मान दिवे जाने कृष्ण अधिष्ठान, प्रति जीव के अंदर प्रभु है, परमात्मा रूपे वास कर रहे हैं, ये वैष्णव धर्म सिखाता है, यही सनातन धर्म का शिक्षा है। और ये हो सकता है कि ये पृथ्वी ते बहु प्रकार के धर्म है, ये वैष्णव धर्म नहीं है। पृथ्वी ते जत किछु धर्म नामे चले, भागवत कहे तारे परिपूर्ण चले। पृथ्वी ते बहुत प्रकार के धर्म है, एक दो धर्म नहीं, बहुत प्रकार के धर्म है। लगता है बिल्कुल धर्म है, किन धर्म नहीं है। भागवत उसका सफाई कर रहे कि नहीं, ये धर्म नहीं। धर्म क्या है, एकमात्र कृष्ण प्रीति, एकमात्र विष्णु प्रीति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। भागवत धर्म उसी को कहा जाता है जहाँ विष्णु की प्रीति व कृष्ण की प्रीति है, जहाँ आत्मेन्द्रिय प्रीति वंछा सारे बलि काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धारे प्रेम नाम। जहाँ आत्मेन्द्रिय प्रीति है वह कामना है और जहाँ कृष्णेन्द्रिय प्रीति है वहाँ प्रेम है, वही से प्रभु प्रसन्न होते। अगर ऐसे भी किया जाता है, जैसे गांव में हम लोग देखे हैं, जैसे एक परिवार में 2 किलो चावल की जरूरत है, 2 किलो चावल की जरूरत है, उसमें से 2 मुट्ठी चावल रख देते कि ये साधु संत की सेवा के लिए, अपने जितना प्रयोजन उसी से कुछ चावल उठा के रखते हैं। ये चावल जब कोई संत माने किसी पुण्य कर्म के लिए कुछ पैसा के लिए आते हैं तो उसको उसको दे दिए जाते हैं। उसी से प्रभु रिच जाते हैं कि आपने कष्ट करके, आपने कष्ट शरीर को कष्ट पहुंचा करके इस सेवा को कर रहे हैं, तो उसी से ठाकुर जी रहस्य। किंतु किसी जीव की हत्या करके किसी पुण्य कर्म करना ये ठाकुर जी रिझेगा नहीं, ये ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होंगे। ठाकुर जी के देखे आपने में कष्ट देकर मुझे प्रसन्नता के, जैसे सनातन गोस्वामी पाद बहुत कष्ट हो रहा है, शारीरिक पीड़ा हो रही है, फिर भी गिरिराज जी की परिक्रमा छोड़ा नहीं। गिरिराज जी की परिक्रमा करने से पांचों अंग, माने कोई भी परिक्रमा करे पांचों अंगों की साधन हो जाता है। जैसे निष्ठा, जहां निष्ठा आती है, जैसे अर्चन, हम लोग अर्चन करते हैं, पूजा कर पुजारी अर्चन करते, ठाकुर जी के षोड़श उपाचार में सबसे पहले अर्चन करते। जैसे वृंदावन जुगल स्वरूप है, परिक्रमा किए तो उसका अर्चन हो गया, एक परिक्रमा मतलब उसका अर्चन हो गया, अगर ठीक से करे अर्चन हो गया। फिर नाम, साथ में नाम भी हो रहे हैं, नाम निष्ठा, धाम निष्ठा, धाम छोड़ के जाते नहीं कि परिक्रमा छूट जाएगा, नाम निष्ठा धाम निष्ठा। फिर साधु संग, संतों का दर्शन हो जाता है, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, कुछ कथा भी सुनने को, संतों के मुख से कुछ कथा सुनने को मिलता है, तो सभी अंगों का साधन हो जाता है। और शारीरिक जब तक कष्ट नहीं उठाएंगे तब तक ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होंगे। एसी में बैठकर भगवान नाम कीर्तन ठीक है, बिना तो खूब तो कुछ नहीं, किंतु ठाकुर जी को रिझाने के लिए शारीरिक कष्ट उठाना पड़ेगा। ठाकुर जी देखे कि इसके पास होते हुए भी एक कष्ट स्वीकार कर रहे हैं। ठाकुर जी के लिए है व्यवस्था, सब ठीक, अनुकूल व्यवस्था होनी चाहिए, किंतु अपने लिए कम करना पड़ेगा, जिससे ठाकुर जी आप भक्त नामावली चरित्र में पढ़ के देखिए, वहां सभी भक्तों ने कष्ट उठाया, बहुत शारीरिक कष्ट। हरिदास ठाकुर 3 लाख, महाप्रभु कहे कि हरिदास इतनी संख्या करने की आवश्यकता नहीं, किंतु हरिदास माने नहीं। हरिदास कहे कि प्रभु यही हमारा आहार है, इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं, इसको मैं आहार त्याग दिया, निद्रा त्याग दिया, और उन्होंने निरंतर कृष्ण नाम जप किया। महाप्रभु माना करने पर भी छोड़ नहीं पाया। महाप्रभु सनातन से कहे कि सनातन अभी वृद्ध हो चुके हैं, इस समय परिक्रमा की आवश्यकता नहीं, किंतु आपने निष्ठा छोड़ नहीं पाए, आखिरी समय तक उन्होंने परिक्रमा करते रहे। कहने का उद्देश्य ये है कि परमात्मा रूप में हृदय में है प्रभु, वो सब देख रहा है, ये हम मुझे पूर्ण रूप से विश्वास करना चाहिए कि प्रभु हमारी सभी लीलाओं को देख रहा है, सभी कर्मों को देख रहा है, छिपा कुछ नहीं रहेगा। जो भागवत में छठा स्कंद में 2 अध्याय में जो 12 साक्षी है, सूर्य अग्नि दिशा, ये सब 12 साक्षी की कथा बातें हैं, तो सभी साक्षी गवाही देंगे हमारी कर्मों का। तो इसीलिए सावधान रहे कि हमारी एक एक क्षण व्यर्थ ना जा पाए, व्यर्थ ना बीते, हर क्षण कृष्ण नाम रूप गुण लीला के अंदर रहे, और हृदय रोम रोम में कृष्ण रस कृष्ण कथा प्रवाहित होते रहे। करना नंदी कलत ध्वनि बहुत में जीभा मरु प्रांगणे, हमारे कलत ध्वनि में कृष्ण कथा गुंजते रहे, और ना देखिए नयने ना सुने श्रवणे तबु लिखी एवड विस्मय। कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि आज उनका आंख नहीं देख रहा है, कान नहीं सुन रहा है, फिर भी श्री चैतन्य चरित्र का उन्होंने लिख रहा है, ये बड़ा आश्चर्य है। और इस ग्रंथ का जो कोई श्रवण करे, कोई मनन करे, कोई चिंतन करे, निश्चित उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त होकर रहेगा। तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम सब सरल भाषा में, प्रभुपाद जी यहाँ एक बहुत शब्द कीमती शब्द लिखे कि बच्चों को याद नहीं रहते उन्होंने क्या क्या कर्म किया, पिता का याद रहते, पिता हमें सब कुछ बता देंगे बचपन में बेटा क्या किया। हाँ, उसी प्रकार हम अगर भूल भी जाए तो परमात्मा भूलेगा नहीं, परमात्मा हर क्षण हर दिन हर मुहूर्त का आपको सुना देंगे। हाँ, पूरा रिकॉर्ड है, वहाँ टैप रिकॉर्ड जैसे दबाते ना, क्लिक करते वो आवाज अपने आप आ जाएगा। तो इसीलिए बहुत सावधानी से हम सबको कृष्ण भावनामृत अनुशीलन करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने जो दिया ये बहुत सुंदर है और ये बहुत मार्मिक है, इस बात पर बने रहना चाहिए। श्री चैतन्य चरितामृत की, श्रील प्रभुपाद की। किसी का कोई प्रश्न मंतव्य बोलो। बोलो, सुन पाएंगे, बोलो। एक प्रश्न और एक प्रश्न। थोड़े दिन उसको निरंतर नाम में अगर पता चल जाए, तो उसको नाम की भक्तों के सान्निध्य में, भक्तों की गोष्ठी में रहना चाहिए, गोष्ठी में। उसको अगर संभव हो तो जाना चाहिए, अगर संभव हो तो उसको वहां जाना चाहिए, मैंने जाना चाहिए पारिवारिक रूप से, समय हो तो जाना चाहिए, अगर नहीं समय दूर है तो यही से प्रार्थना करें प्रभु उसके सुखे रहे। हाँ हाँ, प्रार्थना करना नहीं चाहिए, उसके पास जाना चाहिए। सुनिए ध्यान से, प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु उसके सुस्थ रखे, उसकी आत्मा का कल्याण करे। हाँ, मरने की प्रार्थना नहीं, ठीक। श्रील प्रभुपाद की।